हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनामिका और झलक दोनों ही हाँफती हुई वहां पहुंच गई थी। उन्होंने अपने सारे चक्कर पूरे कर लिए थे। अनामिका ने तुरंत ही एक तरफ जाकर पानी की बोतल उठाई और सीधा अपने होठों से लगाकर पानी पीने लगी थी, और पानी पीने के बाद गहरी सांस लेते हुए वो सीधा दादाजी के सामने गई और उनका हाथ पकड़कर बोली थी, ये क्या आया आपने, पहले ही दिन इतना ज़्यादा करवा दिया आपने। हमें तो आपको बस आज के दिन छोटा मोटा काम ही करने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन आपने इतनी बड़ी अकेडमी का चक्कर लगवा दिया, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अनामिका पूरी तरह मस्ती के तौर पर दादाजी से ये बातें बोल रही थी, मानो कि वो अपने घर पर मौजूद हों। वो इस वक्त पूरी तरह से हंस रही थी। वो इस हंसी और मजाक में ये भी भूल गई थी कि वो दादाजी से सबके सामने इस तरह बात कर रही है। लेकिन झलक दादाजी की आंखों को देखकर समझ चुकी थी कि अनामिका पर दादाजी को कितना गुस्सा आ रहा है। झलक जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक अनामिका और कुछ कहने ही वाली थी। तभी गुरुजी ने तुरंत अनामिका की ओर देखकर थोड़ी तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमारे हाथ यहाँ आकर पकड़ने की, और वैसे भी शायद आप भूल रही हैं कि हम कौन हैं। आपको अकेडमी के सारे रूल्स और नियम अच्छी तरह समझा दिए जाएंगे, और हाँ, आज आप लोगों का पहला दिन है, ये हमें दिवाकर जी ने बताया है, इसीलिए हम आपकी इस पहली और आखिरी गलती समझकर आपको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलतियों की कोई जगह नहीं है। आई होप आप लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ये कहकर गुरुजी सीधा वहां से जाने लगे, लेकिन इसी बीच दिवाकर जी, जो कि ट्रेनर थे, उन्हें रोकते हुए बोले, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो फिर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। इस पर गुरुजी थोड़ी नाराज़गी जताते हुए बोले, अब हम ये सब फिर कभी बताएंगे, अभी हमें कुछ ज़रूरी काम है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। वहीं दिवाकर जी तुरंत अनामिका की बाजू पकड़कर उसे डांटते हुए बोले, ये लड़की, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या, किसी से बात करने का ढंग नहीं है, कितनी अकड़ के साथ रहती हो, और तुमने महागुरु का हाथ पकड़ लिया, हाँ क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम। जैसे ही उन्होंने इस तरह अनामिका को डांटा, वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। भीड़ में से एक सीनियर लड़का, जिसका नाम राघव था, वो भी अनामिका को गौर से देखने लगा। फिलहाल झलक ने तुरंत अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। फिर वो सीधे दिवाकर जी को देखकर बोली, हमें नहीं पता था कि महागुरु का हाथ पकड़ने पर इतना बड़ा बवाल मच जाएगा, या फिर वो इस तरह रिएक्ट करेंगे, और वैसे भी हमारा यहाँ पहला दिन है और अभी तक आपने हमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस ठीक से समझाए नहीं है, तो आप हमें इस तरह जज नहीं कर सकते। फिर झलक ने वहां मौजूद सब लोगों की ओर देखकर सख्त आवाज में कहा, और यहाँ जितने भी लोग मेरी बहन पर हंस रहे हैं, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर किसी के मुंह से जरा सी भी हंसी निकली तो मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगी। झलक का ये दबंग अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की हंसी गायब हो गई, सब हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं दिवाकर जी मन ही मन सोचने लगे कि आखिर इस लड़की को यहाँ किसने एडमिशन दे दिया और ये यहाँ क्यों आई है। लेकिन अनामिका को झलक की ये बात बहुत अच्छी लगी। जिस तरह झलक ने सबके सामने उसका स्टैंड लिया, उसे अपने पीछे खड़ा किया और सबके सामने डटकर बात की, उससे सभी लोग काफी हद तक हैरान थे। तभी भीड़ में खड़ा एक लड़का अपने दोस्त के कान में फुसफुसाते हुए बोला, देखा तुमने, ये लड़की कितनी दबंग है, पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। मानता हूँ कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या खूबसूरती का मतलब इतना ज्यादा घमंड होता है कि इस तरह बात करे। कहीं ना कहीं इस वक्त सभी लोगों के मन में झलक और अनामिका को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं बन चुकी थीं। लेकिन फिलहाल अनामिका कमहू पूरी तरह से फूला हुआ था। उसे अपने दादाजी पर गुस्सा आ रहा था और वो यही सोच रही थी कि आखिर दादाजी सबके सामने उसे इस तरह डांट कैसे सकते हैं। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में नाराजगी साफ छलक रही थी। फिलहाल वे लोग वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे में आ गए थे, क्योंकि वहीं रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। जानबूझकर ट्रेनर ने अनामिका और झलक को एक ही कमरा दिया था और उस कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। अब अनामिका और झलक कमरे में आकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी थी, लेकिन अनामिका का मुंह अब भी फूला हुआ था। वो सीधा जाकर उल्टी पलटी मारते हुए बेड पर बैठ गई। वहीं झलक उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो, इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है तुम्हें, हाँ बोलो। अनामिका मुंह फुलाते हुए बोली थी, देखा तुमने दादाजी ने किस तरह से डांटा, बताओ तो सही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम जानती हो वो हमेशा से मुझे अपने सीने से लगाए रखते थे, कभी उन्होंने मुझे खुद से अलग नहीं किया, और जब भी मैं छोटी बड़ी फील्ड में कामयाब हुआ करती थी वो हमेशा मुझे शाबाशी दिया करते थे, मुझे गले से लगाया करते थे, और आज जब मैं इतना ज्यादा पूरी बड़ी अकेडमी का चक्कर काट कर आई हूँ, इतना हार्डवर्क करके आई हूँ, मुझे लगा था कि दादाजी आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शाबाशी देंगे, और मैंने सोचा था कि मैं जाकर उन्हें गले लगाऊंगी, और आज तो मैंने सिर्फ उनका हाथ पकड़ा था, उन्हें गले से भी नहीं लगाया। फिर भी उन्होंने सबके सामने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हैं? ये कहते कहते अनामिका पूरी तरह से रोने लगी थी, लेकिन झलक ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोली, शायद तुम भूल रही हो, दादाजी ने हमें यहाँ भेजने से पहले ये बात साफ साफ क्लियर कर दी थी कि हम चाहकर भी सबके सामने उन्हें दादाजी कहकर नहीं पुकार सकते। तुम समझ रही हो ना इसका मतलब? इस पर अनामिका बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ इसका मतलब, लेकिन फिर भी दादाजी को मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। देखना, अब मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। ये कहकर अनामिका बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ गई थी। वहीं झलक को थोड़ी सी हैरानी हो रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ये वही अनामिका है जो मेरे सामने कितनी मैच्योर बनने का नाटक कर रही थी, और अब देखो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आने से उसके अंदर की छुपी हुई बच्ची धीरे धीरे बाहर आ रही है? लेकिन फिलहाल झलक ने उससे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बोली, अभी हमारे लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि दादाजी ने तुम्हें किस तरह डांटा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम सोएंगे कहाँ। तुमने देखा नहीं, इस बेड पर मुश्किल से एक इंसान ठीक से सो सकता है, और जानबूझकर हमें एक ही बेड दिया गया है। नीचे सोने के लिए भी यहाँ इतनी जगह नहीं है। तब अनामिका बोली, अरे हाँ, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं जाकर दादाजी से इसकी शिकायत करती हूँ, देखना वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये कहकर अनामिका जैसे ही बाहर जाने लगी, झलक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, शांत हो जाओ, दादाजी ने साफ साफ कहा था कि एकेडमी में आने वाली हर चुनौती का सामना हमें खुद ही करना होगा। इसमें हम उनकी मदद नहीं ले सकते, और अगर हम उनसे मदद मांगने गए तो वो हमें आज ही यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, झलक ने आगे कहा। और वैसे भी तुमने देखा नहीं, यहाँ दादाजी की कितनी ज्यादा इज्जत है। अगर लोगों को ये पता चल गया कि हम उनकी पोतियां हैं तो सब उन्हें अलग नजरों से देखने लगेंगे। इसीलिए हमें मेहनत करके दादाजी की इज्जत और उनका रुतबा बनाए रखना है, ताकि जब वो हमें सबके सामने इंट्रोड्यूस करें तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। झलक की ये गहरी बात सुनकर अनामिका धीरे धीरे शांत हो गई। फिर वो बोली,
लेकिन यार तुमने देखा नहीं यहाँ कितना ज्यादा हार्डवर्क है? मैं तो कहती हूँ कि हमें इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है। हमारे साथ इतने सारे बॉडीगार्ड रहते हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम जब चाहें इन सब लोगों को भी अपना बॉडीगार्ड रख सकते हैं। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों।